थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हबक्कूक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरे दिल हालेलुया, मिलती है जय मुझको तुझसे, का मेरे दिल हालेलुया। मसीह में तेरे संग चलूं, तुझी में मैं बना रहूं। मसीह में तेरे संग चलूं, तुझी में मैं बना रहूं। मैं अब ना रहूंगा खुदा से जुदा, मिलती है जय मुझको तुझसे, का मेरे दिल हालेलुया। जाता हूँ मैं शेरों से ज्यादा ताकत पाता हूँ। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, मैं शेरों से ज्यादा ताकत पाता हूँ। उसी से मुझे बल मिला, वही तो मेरा है खुदा। उसी से मुझे बल मिला, वही तो मेरा है खुदा। तो क्यों मैं रहूं उस खुदा से जुदा, मिलती है जय मुझको तुझसे, का मेरे दिल हालेलुया। मिलती है जय मुझको तुझसे, का मेरे दिल हालेलुया। मसीह में तेरे संग चलूं, तुझी में मैं बना रहूं। मसीह में तेरे संग चलूं, तुझी में मैं बना रहूं। मैं अब ना रहूंगा खुदा से जुदा, मिलती है जय मुझको तुझसे, का मेरे दिल हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक और उसमें से हब्बकूक नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि हब्बकूक परमेश्वर से प्रश्न करता है कि वह दुष्टों को नाश क्यों नहीं करता, और जब वह यहूदियों को नाश करने की बात उसे बताता है तो हब्बकूक परमेश्वर से दया की याचना करता है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम सब इस अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम हब्बकूक नबी की पुस्तक से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय दूर दराज में बैठकर रेडियो के निकट आपके वचन को सुनने की तैयारी में है, प्रभु जी आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, वचन की गंभीरता को समझने पाए। पिताजी, आपसे यही प्रार्थना है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को सहायता प्रदान करें। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं अपने उन प्रिय श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं परंतु बीमार हैं, निराश हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं। प्रभु जी, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करें, उन्हें छुटकारा दे, चंगाई दे, शांति और आनंद दे, वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें, ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के अध्ययन पर अपनी विशेष आशीष प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि हब्बकूक ने कहा था कि वह गुम्मट में जाकर प्रतीक्षा करेगा कि परमेश्वर उससे क्या कहता है, परमेश्वर से उत्तर पाकर उसके विचार बदल जाते हैं और उसकी आंखें खुल गई। वह जो परमेश्वर को चुप बैठे रहने का दोष दे रहा था, अब डर गया कि परमेश्वर का दंड अति कठोर है। अभी तक तो वह अपने लोगों से रुष्ट होकर परमेश्वर से उन्हें दंड देने को कह रहा था, परंतु अब वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उन्हें दंड तो दे परंतु अपने क्रोध में भी दया करना न भूले, क्योंकि बेबीलोन की सेना अति भयानक थी। उसने अश्शूर जैसे खूंखार लोगों का भी दमन किया था। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर की योजना। मेरे विचार में इस पद्यांश की पृष्ठभूमि में तीन लोग हैं, परंतु उनका नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि यह भजन परमेश्वर के कार्यों का वर्णन है। कुछ टीकाकार केवल दो मनुष्यों को ही देख पाते हैं, परंतु मेरे विचार में अब्राहम जो पद 3-6 में है, मूसा पद 7-10 में और यहोशू पद 11-15 में है, ये तीनों हैं। तथापि कुछ विचारकों के अनुसार केवल मूसा ही है जिसका वर्णन पद 3 और उसके 10 पद में किया गया है। तो आइए हम इस पुस्तक के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हबक्कूक की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। लिखा है तेमान। तेमान एदोम देश में था और परान सिनै प्रायद्वीप में के निकट ही था। कुछ विचारकों के अनुसार यह उस समय का उल्लेख है जब मूसा इसराइल को मिस्र से निकालकर इस क्षेत्र में आया था, परंतु अब्राहम इससे पूर्व वहां मिस्र आ चुका था। देखते हैं सेला। सेला प्रायः भजनों में आता है, अतः यह अध्याय भी भजन है। सेला के विषय अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह भजन के मध्य सांस लेने का अंतराल है। अन्यों का मानना है कि इस समय ढोलक बजना है और भजन को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाना है। मैं संगीत के विषय में शून्य हूं, अतः मेरे विचार में यह है, रुको, देखो, सुनो। परमेश्वर कहता है, ध्यान से सुनो, चूकना नहीं। इस समय गायक रुकेगा और ढोलक बजाने वाला पूरे जोश के साथ बजाएगा। सेला का अभिप्राय यही है, जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दो। मेरे मित्रों, आप चाहे अब्राहम हो या मूसा, परमेश्वर दोनों ही के साथ था। यहां परमेश्वर की महिमा का एक अनुपम चित्रण है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उस समय तो ऐसा नहीं था, परंतु जी हां, अब्राहम के मन में निश्चय ही परमेश्वर की स्तुति व्याप्त थी। इसराइल के मन में भी निर्गमन के आरंभ में परमेश्वर की स्तुति भरी थी। उसके बाद ही वे शिकायत करने लगे थे, कुड़कुड़ाने लगे थे, दोष लगाने लगे थे। यहां पर हम देखते हैं, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों को परमेश्वर के तेज से प्रभावित होना चाहिए। हमारा परमेश्वर कैसा वैभवशाली परमेश्वर है, सामर्थी और कैसा आश्चर्यजनक परमेश्वर है, इसलिए हमें भी उसकी निकटता में आना चाहिए। हबक्कूक कहता है 3 अध्याय के 4 पद में, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। कहता है, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी। जब प्रभु यीशु अपने कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तब उसमें एक ऐसा तेज होगा जो उसके जन्म के समय उसमें नहीं था, और जब वह पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करने आएगा, तब भी यह तेज उस पर होगा। लिखा है, इनमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के तेज ने उसे ऐसा ढांक रखा था कि वह दिखाई नहीं देता था। परमेश्वर का तेज उसके तेज को ढांक लेता है, उसका वैभव। विश्वासियों को इससे अंतर्ग्रहण करके उसका सम्मान करना है, परमेश्वर के वैभव का। हबक्कूक 3 अध्याय के 5 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उसके आगे आगे मरी फैलती है और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। यह पद मूसा के संदर्भ में भी हो सकता है, जब 10 विपत्तियां मिस्र पर आई थी, परंतु अब्राहम भी मिस्र को गया था जब अकाल एक विपत्ति लेकर के आई थी। मेरे प्रियो, यहां पर हम दोनों के बारे में देख रहे हैं। हबक्कूक कहता है 3 अध्याय उसके 6 पद में, वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। कहता है वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे यह देश अवश्य देगा और उसने उसे नापा था। परमेश्वर ने कहा कि उसने संसार के देशों को इस प्रकार रखा है जिस प्रकार उसने अब्राहम को वह देश दिया है। यह एक अति आश्चर्यजनक बात है। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गईं। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। हमारे परमेश्वर की गति हमारे समझ से परे है। जी हाँ मेरे मित्रों, यह एक अनुपम भजन है। हमारे परमेश्वर की गति आपके और मेरे समझ से परे है। हबक्कूक 3:7 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे हुए दिखाई पड़े और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। लिखा है, मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे हुए दिखाई दिए। कुशान इथोपिया है और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। आपको स्मरण होगा कि मूसा कुछ समय मिद्यान देश में था। कुछ विचारकों का मानना है कि फिरौन की पुत्री का पुत्र होने के कारण मूसा ने सेना लेकर इथोपिया पर चढ़ाई की थी, परंतु इसका लेख नहीं है। परंतु प्रेरितों के काम 7:22 में लिखा है कि मूसा वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। आगे हम देखेंगे हबक्कूक 3:8 में लिखा है, हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जल जलाहट समुन्दर पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था। यह इसराइल द्वारा लाल सागर और यर्दन नदी पार करने के संदर्भ में है। परमेश्वर ने उनके लिए पानी को विभाजित किया था। यह भाषा रूपक और साहित्यिक सौंदर्य है। परमेश्वर समुन्दर और यर्दन नदी से क्रोधित नहीं था कि उसने इसराइल का मार्ग बाधित किया, परंतु उसने केवल मार्ग बनाया ताकि इसराइली उसमें होकर जा सकें। हबक्कूक 3:9 में लिखा है, तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था, तूने धरती को नदियों से चीर डाला। यहां पर कहता है, तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। परमेश्वर अपनी वाचा और इसराइल को दी गई प्रतिज्ञाएं निभा रहा था। जी हाँ, सेला का अर्थ है ढोलक बजा कि वे जाग जाएं और ध्यान से सुने। आगे कहता है, तूने धरती को नदियों से चीर डाला। क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है? नदियां धरती को काटती हैं। यह कैसी सुंदर उपमाएं हैं जो सही चित्रण है। हबक्कूक 3:10 में हम पढ़ते हैं, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय निकल गए, गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। सीनै पर्वत पर मूसा को जब परमेश्वर व्यवस्था दे रहा था तब पर्वत कांप रहे थे। इसराइल तो इतना अधिक डर गया था कि वह परमेश्वर की वाणी भी सुनना नहीं चाहता था। ये पद इसराइल की मुक्ति से संबंधित हैं, कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें कैसे मुक्ति दिलाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी और उसे पूरा किया। उसने मूसा से वाचा बांधी कि वह इसराइल को मिस्र से मुक्ति दिलाएगा और उसने ऐसा ही किया। पद 11 यहोशू से संबंधित है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि यहां परमेश्वर के कामों का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए नामों का महत्व नहीं है। आइए हम पढ़ें हबकूक की पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। लिखा है सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। यह यहोशू के समय की घटना है। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से, दूसरे शब्दों में सूर्य का चमकना भाले की चमक के समान थी, और इसीलिए यहां पर कहा गया है कि उनकी ज्योति के समान चमक थी। हबक्कूक 3:12 में हम पढ़ते हैं, तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। परमेश्वर ने अमोनियों के पाप के कारण उन्हें वहां से निकालकर अपनी प्रजा को वह स्थान दिया। उस युग में वहां यौन रोग महामारी के स्तर पर था, अतः परमेश्वर को उन्हें समाप्त करना पड़ा। हबक्कूक 3:13 में हम पढ़ते हैं, तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला, तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचलकर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। कहता है अपने अभिषिक्त से अभिप्राय, यहां पर इसराइल है या प्रभु यीशु, यह स्पष्ट नहीं है, परंतु मेरे विचार में यह प्रभु यीशु के बारे में है। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हां अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। प्रभु यीशु उद्धारकर्ता और अभिषिक्त है। आगे हम पढ़ते हैं, तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचलकर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। अभिषिक्त का उल्लेख आने पर ढोलक को चरम सीमा पर बजाना है। यह उद्धार के लिए परमेश्वर की अति उच्च कोटि की प्रशंसा है। उसने इसराइल का उद्धार किया था, उसने उन्हें मूसा के हाथों मुक्ति दिलाई और यहोशू की अगुवाई में प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश दिलाया। ये सब परमेश्वर के काम थे। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं हबक्कूक 3 अध्याय उसके 14:15 में लिखा है, तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है, वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हां जल प्रलय से पार हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी कर रहा था, जो उनका उद्धार था। अब हम हबक्कूक के इस संदर्भ में प्रतिक्रिया को देखेंगे, और मैं मानता हूं कि मैं इसका अध्ययन करवाने में पूर्ण सक्षम नहीं हूं। यह परमेश्वर के वचन का एक महान अंश है। काश मैं आपके मन में इसकी महिमा और इसके वैभव को उतार पाऊं। मेरे मित्रों, यहां पर हम एक महान बात देख रहे हैं कि परमेश्वर अब्राहम, मूसा और यहोशू के साथ है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया और आज भी वह हमारे जीवन में कार्य करता है। यदि हम उसकी निकटता में आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है और वह चाहता है कि उसकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा हमने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। हम अगले अध्ययन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब वचन में बने रहें, परमेश्वर की निकटता में स्थिर रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहो मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहो मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो तेरे।